नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की। खाड़ी क्षेत्र में कई हत्याओं, हवाई हमलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों पर हमलों के बाद तनाव बढ़ा। सरकार ने कहा, उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 हफ्तों में 1 लाख से अधिक घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए देश को ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 3 दिनों की बढ़त के बाद मुनाफा वसूली से सेंसेक्स और निफ्टी में आज 3% से अधिक की गिरावट। और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, सिंगल्स में अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमसा कुरनन डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी से पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और तत्काल तनाव कम करने पर बल दिया। वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में ऊर्जा केंद्रों पर हमले निंदनीय हैं और इनसे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों सहित हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी में ओमान और जॉर्डन के प्रयासों की सराहना की। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पश्चिम एशिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 2 सप्ताह के भीतर लगभग 1,25,000 घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।
भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 2,80,000 यात्री स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार कुवैत, बहरीन और इराक में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी सुगम बना रही है। उन्होंने बताया कि सुरक्षित बचाए गए जहाज सेफ सी विष्णु के भारतीय चालक दल के 15 सदस्य इराक से रवाना हो चुके हैं।
15 इंडियन क्रू मेंबर्स
सुरक्षित बचाए गए तेल टैंकर MT सेफ सी विष्णु के 15 भारतीय चालक दल के सदस्य इराक से रवाना हो चुके हैं और जल्द ही उनके भारत लौटने की उम्मीद है। हमारा मिशन उनसे और संबंधित इराकी अधिकारियों से है ताकि इस घटना में दुर्भाग्यवश जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके।
लॉस्ट हिज लाइफ इन द इंसिडेंट।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य सहित फारस की खाड़ी में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं।
भारतीय फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं। डीजी शिपिंग जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए।
भारत ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा केंद्रों पर हाल के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन हमलों से पहले से ही अनिश्चित वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में और अधिक अस्थिरता का खतरा है। ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों द्वारा ऊर्जा सहायता की मांग की जा रही है।
बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से हमारे पास अनुरोध आया है कि हम उनकी मदद करें। बहुत सारे देशों के साथ हमारे पहले से ही ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी चल रही है और अभी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मांगा है मदद, बांग्लादेश की पूर्ति की जा रही है और अन्य देशों का जो भी अनुरोध है उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं।
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर क्रूर हमलों की निंदा करता है। अमरीका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबर्ड के पाकिस्तान को लेकर बयान पर श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु प्रसार को लेकर पुराना इतिहास रहा है।
जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनका क्लैंडेस्टाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इतिहास रहा है और इस प्रकार के बयान से वो फिर जग जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार इनके क्लैंडेस्टाइन न्यूक्लियर ऑपरेशंस के कारण खतरा दुनिया के सामने आता है।
ईरान में फंसे छात्रों पर श्री जायसवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी ईरान में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कश्मीर की लड़कियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत उनकी हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रहा है। अगले कुछ दिनों में इन सभी को स्वदेश वापस लाया जाएगा। पश्चिम एशिया में कई हत्याओं, हवाई हमलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों पर हमलों की घटनाओं के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल लेबनान के भीतर तक हवाई हमले कर रहा है। लेबनान में मध्य बेरूत के बस्ता और जुकाक अल बलात इलाकों को निशाना बनाया गया। इसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तत्काल युद्ध विराम की अपील के बावजूद इसराइली सेना लितानी नदी की ओर बढ़ रही है। 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने रियाद में संयुक्त बयान जारी कर नागरिक बुनियादी ढांचे पर ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को अगले कुछ वर्षों में स्वदेशी ड्रोन निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन में श्री सिंह ने वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनना होगा।
आज भारत में कैसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों, और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं होनी चाहिए बल्कि कंपोनेंट के स्तर पर भी जरूरी है। ड्रोन के मॉल से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सभी भारत में ही बने।
सेना की दक्षिणी कमान ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास का संचालन किया। इस अभ्यास में बहुक्षेत्रीय परिचालन वातावरण में हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, ड्रोन, ड्रोन रोधी प्रणाली और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अभ्यास का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में भविष्य के लिए तैयार सेना की बढ़ती युद्ध क्षमता को दर्शाया गया। देश में जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये 195 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि देश में जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर थी जो केवल एक दशक में लगभग 20 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति जैव प्रौद्योगिकी से ही आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर इसका प्रतीक है। अयोध्या में एक सभा में राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के बंधन में प्राप्त होती है।
इसके बाद राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर गई और आरती में शामिल हुई। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई है। आयोग ने सशस्त्र बल, स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, परिवहन और विमानन जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाताओं और मतदान के लिए अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी डाक मतपत्र सुविधा प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक को माथा भांगा, पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण और पूर्व हॉकी खिलाड़ी भरत छेत्री को कलिम्पोंग से टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी ने असम में 88 उम्मीदवारों की पहली सूची और केरलम में 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा ने विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में वामदल ने भी आज 32 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी की, इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज बिकवाली के दबाव से 3.3% की बड़ी गिरावट से 2497 अंक लुढ़ककर 74207 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 3.3% के नुकसान से 776 अंक की गिरावट से 23002 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार आज गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में बंद रहा और वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $110 प्रति बैरल से ऊपर दर्ज हुए।
चैत्र नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चीटीचंड, नवरेह, साजिबू चेरोबा और नव संवत्सर आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित होते हैं। पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इन दिनों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ और देवी भजनों के माध्यम से श्रद्धालु माँ दुर्गा से सुख समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। कई घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। वहीं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष। इसे विक्रम संवत के रूप में भी जाना जाता है।
और अब कुछ खेल खबरें। फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के और अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमसा करुणन डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। तन्वी शर्मा ने अनमोल खरब को प्री क्वार्टर फाइनल में हराया, वहीं अर्जुन और हरिहरन ने स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल को हराया। भारत 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये चैंपियनशिप ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। दिल्ली में आज बारिश हुई। मौसम में आए अचानक बदलाव से नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में आंधी आई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि पश्चिम बंगाल में हिमालय में तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की। खाड़ी क्षेत्र में कई हत्याओं, हवाई हमलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों पर हमलों के बाद तनाव बढ़ा। सरकार ने कहा उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 हफ्तों में 1,00,000 से अधिक घरेलू और वाणिज्यिक PNG कनेक्शन जारी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए देश को ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। और घरेलू शेयर बाजारों में 3 दिनों की बढ़त के बाद मुनाफा वसूली से सेंसेक्स और निफ्टी में आज 3% से अधिक की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।